नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में अहम बातें। कल यानी 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। आइए इससे जुड़ी कई जानकारियां जानते हैं। यहाँ नागरिकता के लिए किस पोर्टल पर आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किन्हें नागरिकता मिलेगी, ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्या करना है। CAA कानून के लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासी यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों, उन सभी को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन ये सब कुछ एक प्रोसेस के तहत होगा, तो आइए जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले ऐसे लोगों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सारी जानकारी देनी होगी। हालांकि सरकार की कई शर्तों का पालन भी ऐसे लोगों को करना होगा। आवेदकों को बताना होगा कि वो किस साल से भारत आए, साथ ही अपने ज़रूरी कागज़ जैसे कि वीज़ा, इमिग्रेशन स्टैम्प की जानकारियां भी देनी होंगी। उनमें शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज़ मांगे गए हैं, शेड्यूल 18 के तहत 20 तरह के और शेड्यूल IC के तहत एफिडेविट देना होगा। जिस देश से आए हैं वहाँ का पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, घर, ज़मीन या किराए के घर से संबंधित दस्तावेज़, पहचान साबित करने वाला दस्तावेज़, भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीज़ा या इमिग्रेशन स्टैम्प समेत कई जानकारियां देनी है। पैनिक करने की कोई सिचुएशन ना हो इसीलिए भी सरकार ने व्यवस्थाएँ की हैं। जैसे अगर किसी तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फॉर्म में उसका कारण बताने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप उस ऑप्शन में सटीक कारण बता सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। सबसे पहले आपका आवेदन ज़िला कमेटी के पास भेजा जाएगा। वहां से होते हुए आवेदक की जानकारी एम्पावर्ड कमेटी के पास भेजा जाना है। उसके बाद अधिकतर प्राप्त कमेटी की ही आपकी नागरिकता पर आखिरी फैसला लेगी। इस पूरी प्रक्रिया में खुफिया एजेंसी IB, फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी, रीजनल रजिस्ट्रेशन के लोग, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और राज्य सूचना के अधिकारी शामिल होंगे। फॉर्म भरने के शुरुआती चरण में आम जानकारियां भरनी होंगी, जैसे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और किस इलाके में रह रहे हैं, कौन से देश से आए हैं, उस देश के किस इलाके में रह रहे थे और अब भारत में क्या काम कर रहे हैं, साथ ही किस धर्म को फॉलो करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। कई लोगों का सवाल ये भी है कि भारत आने के बाद उन पर कोई आपराधिक केस चल रहा हो तो क्या करें। सरकार ने कहा है किसी भी तरह की कानूनी धाराओं में अगर आपका नाम है तो वो सारी जानकारी आपको फॉर्म के अगले चरण में भरनी होगी। अगर अधिकारियों को लगता है कि ऐसे शख्स को भारत की नागरिकता देने से खतरा है तो आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। बहुत साधारण बात है कि जितने भी प्रवासी भारत आए उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और शादीशुदा भी होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भी फॉर्म में सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे अगर किसी ने भारत आने के बाद शादी की है तो उसे इसकी भी पूरी जानकारी साझा करनी होगी। साथ ही बच्चों के लिए भी अलग से फॉर्म बनाया गया है। नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों को कई तरह के प्रमाण पत्र भी सरकार से हासिल करने होंगे। सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी डिजिटल तरीके से ही होगी। आवेदक को सभी तरह की जानकारियां भरने के बाद सत्यता की पुष्टि करनी होगी और अपने साइन अपलोड करने होंगे। अगर कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है या किसी तरह की धोखाधड़ी करने की कोशिश की जाती है तो आवेदक का फॉर्म कैंसिल हो सकता है। सही जानकारी पाई जाने पर सरकार की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्या CAA से किसी की नागरिकता छीन सकती है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, किसी की भी नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए जा रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को उनके मानवाधिकार के तहत नागरिकता देना सुनिश्चित करता है। इसलिए जो भी इन तीन देशों में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए उन्हें सशक्त करने का कानून है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।